नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। कहा, सुगंधित पौधे और फूल राज्य की आर्थिक समृद्धि व ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक, बीज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाओं के परफॉर्मेंस ऑडिट करने के निर्देश दिए। और लालकुआ से कोलकाता के चितपुर रेलवे स्टेशन के बीच 13 मार्च से विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के पुष्प न केवल सौंदर्य और विशिष्टता में अद्वितीय हैं, बल्कि राज्य को पुष्प प्रदेश के रूप में स्थापित करने की असीम संभावनाएं भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शहद, सुगंधित पौधों और फूलों के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि और ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।
हमारा जो विकसित प्रदेश, विकसित भारत और जो पुष्प प्रदेश बनने का लक्ष्य है, लगता है कि हमारे सामने में हम अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। हमारा जो प्रदेश है सचमुच एक पुष्प प्रदेश है। हमारा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारा जो योगा, आयुर्वेद, वेलनेस सेक्टर है, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा अट्रैक्शन है कि पूरी दुनिया, पूरी मानवता उत्तराखंड में आकर इस चीज का अनुभव करना चाहती है, अनुभूति करनी चाहती है, दर्शन करना चाहती है इस चीज का। यहाँ पर इस उत्सव के अंदर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बहुत सुंदर स्टॉल्स लगाई है। इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ स्टॉल्स लगाई है और सचमुच देखकर लगता है कि हमारे फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे यूथ एक अलग तरीके से एक क्रांति लाने वाले हैं।
राज्यपाल ने फूलों की भव्य प्रदर्शनी और विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस आयोजन में भाग लें और प्रकृति के इस अद्भुत उत्सव का आनंद लें। इस अवसर पर राज्यपाल ने डाक विभाग द्वारा इस वर्ष के लिए विशेष डाक आवरण के लिए चयनित औषधि गुणों से भरपूर पौधे जटामानसी का विमोचन किया। साथ ही डाक विभाग देहरादून द्वारा लगाई गई भव्य डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक, बीज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उत्तराखंड औद्यानिक परिषद की 8वीं सामान्य सभा की बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग को जैविक जिला घोषित किए जाने के बाद वहां जैविक खेती को और बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने पर जोर दिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने राज्य में कीवी, बड़ी इलायची और परिसीमन फल की खेती को बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास करने को कहा। साथ ही टिहरी जिले के थतयुड़ क्षेत्र में किसानों की उपज के लिए एक छोटी मंडी बनाने के निर्देश दिए। पौड़ी में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के डॉ. बी. गोपाला रेड्डी परिसर में भारतीय संस्कृति में निहित मौलिक मूल्य एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति के मौलिक मूल्यों, भारतीय सभ्यता की प्राचीन परम्पराओं, नैतिक मूल्यों और सामाजिक संरचना आदि विषयों पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ परिसर के निदेशक प्रोफेसर पीवीबी सुब्रमण्यम ने कहा कि संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन करना है।
भारतीय संस्कृति में निष्ठ जो मूल्य, वे राष्ट्र निर्माण में कैसे सहयोग हो सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या प्रासंगिकता है, उस पर यह राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित हुआ है। यह भारतीय दार्शनिक अनुसंधान संस्थान और इस परिसर के दोनों के तत्वावधान में हुआ है, क्योंकि आप इस समय के भारत में जो गतिविधियां हैं उनको आप देख सकते हैं, जहां 66 करोड़ लोग जहां कुंभ में स्नान किए हुए हैं, और इसके अलावा 140 करोड़ की इस आबादी में न जाने कितने ऐसे करोड़ लोग हैं सुबह उठते ही श्लोक पढ़ने के बाद ही उठते हैं। बस उनमें एक ऐसे परिवर्तन, ऐसे एक सुविधा ले आने की आवश्यकता है, और वो सरकार की ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से प्रयास पूर्ण रूप से चल रहा है।
देवभूमि उद्यमिता विकास योजना के तहत चंपावत जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी की प्राचार्य डॉ. अजिता दीक्षित ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी में 4 फरवरी से 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्रा और स्थानीय युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ना है।
पर देवभूमि उद्यमिता अहमदाबाद द्वारा आयोजित है ये कार्यक्रम, और ये दिनांक 4 तारीख से प्रारंभ हो गया है और ये 12 दिवसों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के छात्र भी हैं और स्थानीय छात्र भी हैं, जो 45 वर्ष से कम उम्र के हैं वो पंजीकृत हैं। और यहाँ इस कार्यक्रम के द्वारा जो स्थानीय उत्पाद हैं उनसे कैसे रोजगार हासिल कर सकें, नया उद्यम प्रारंभ कर सकें, इस सभी चीजों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कैसे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्वरोजगार की ओर भी उन्मुख हों और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और ये कार्यक्रम उसी के लिए आयोजित किया गया।
चमोली जिले के सीमावर्ती क्षेत्र नीति घाटी को जोड़ने वाला पुल भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। बीआरओ ने युद्धस्तर पर नए पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। बीआरओ के अनुसार बीती रात नीति घाटी में भापकुंड के पास पहाड़ी से बोल्डर आने के कारण पांगती पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित अधिकारियों को महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाओं के परफॉर्मेंस ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति की महासभा की वार्षिक बैठक में श्रीमती रतूड़ी ने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करते हुए रीमॉड्यूलेशन पर जोर दिया है। उन्होंने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत मेधावी छात्राओं के लिए देश भर में शैक्षिक भ्रमण करवाने की योजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी महिलाओं एवं बालिकाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहित करने को लेकर मुख्य सचिव ने सैनिटरी नैपकिन के वितरण की कार्ययोजना पर कार्य करने की बात कही है। नैनीताल जिले के लालकुआं और कोलकाता के चितपुर रेलवे स्टेशन के बीच आगामी 13 मार्च से विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। ये ट्रेन लालकुआं से गुरुवार को अपराह्न 1:35 पर चलेगी और अगले दिन रात्रि 11:55 पर चितपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन शनिवार को चितपुर रेलवे स्टेशन से शाम 5 बजे चलकर अगले दिन अपराह्न 3:45 पर लालकुआं पहुंचेगी। इस रेलगाड़ी में सामान्य शयनयान, वातानुकूलित शयनयान सहित कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। बागेश्वर में निपुण भारत मिशन के तहत LTM और IEC सामग्री निर्माण कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. संदीप कुमार जोशी ने बताया कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य बच्चों को पढ़ने लिखने और गणित में बुनियादी कौशल सिखाना है।
जो हमारा निपुण भारत मिशन है उसके अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को भाषा और गणित में प्रवीण बनाने के लिए कक्षा कक्ष में शिक्षकों द्वारा क्या कंटेंट डेवलप किया जाता है तो उस पर ये प्रदर्शनी हो रही है। तो इसका मुख्य उद्देश्य मौखिक भाषा विकास से लेकर के बच्चे के धारा प्रवाह पठन तक, क्योंकि निपुण भारत मिशन में कहा गया कि जो हमारा कक्षा 3 का विद्यार्थी होगा वो 1 मिनट में 60 शब्द प्रति मिनट धारा प्रवाह पढ़ सकता है और विद अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ, और जो सामान्य गणितीय संक्रियाएं हैं जोड़ घटाना गुणा भाग उनको कर सकता है। तो इन सब संक्रियाओं को समझाने और भाषा की को महत्ता देने के लिए शिक्षकों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है जो काबिले तारीफ है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में वसंतोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। कहा, सुगंधित पौधे और फूल राज्य की आर्थिक समृद्धि व ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक, बीज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाओं के परफॉर्मेंस ऑडिट करने के निर्देश दिए और लालकुआ से कोलकाता के चितपुर रेलवे स्टेशन के बीच 13 मार्च से विशेष साप्ताहिक रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।